अध्याय चार, सीखना या अधिगम, लर्निंग। सीखना का अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग। सीखना एक बहुत ही व्यापक तथा महत्वपूर्ण शब्द है, अतः मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की परिभाषा वैज्ञानिक ढंग से देने की कोशिश की है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता। व्यवहार में परिवर्तन थकान, दवा खाने से, बीमारी आदि से भी हो सकता है, परंतु ऐसे परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जा सकता। मनोवैज्ञानिकों में सीखने से तात्पर्य उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होते हैं। प्राय इसी तरह के परिवर्तन का उद्देश्य व्यक्ति को किसी दिए हुए वातावरण में समायोजन करने में मदद करने से होता है। अतः कहा जाता है कि सीखना व्यवहार में वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है तथा जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करना होता है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की परिभाषा यद्यपि अलग अलग ढंग से दिया है, फिर भी उनके विचार में इस पद के मूल अर्थ के बारे में काफ़ी सहमति है। उदाहरण स्वरूप कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा नीचे दिया जा रहा है। सॉर्टेन, नॉर्थ तथा चैपमैन के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। मॉर्गेन, किंग तथा स्कॉपलर के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। हर्गे हॉर्न ने जो किम्बल द्वारा दी गई परिभाषा में संशोधन करने की सीखने की परिभाषा दिया है, इस प्रकार है। सीखना या व्यवहारात्मक अंतःशक्ति में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभूति के कारण होता है और जिससे अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं जैसे वे अवस्थाएं जो बीमारी, थकान या औषधि लेने आदि से उत्पन्न होते हैं के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता। ऊपर की परिभाषाओं एवं अनेक अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई लगभग समान परिभाषाओं का यदि एक संयुक्त विश्लेषण किया जाए तो सीखने का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस तरह से विश्लेषण करने पर हम लोग निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पहला, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर परिस्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। व्यवहार में परिवर्तन एक अच्छा एवं अनुकूली परिवर्तन भी हो सकता है या खराब एवं कुसमजित परिवर्तन भी हो सकता है। स्वेटर बुनना सीखना आदि में व्यवहार में एक अच्छा एवं अनुकूल परिवर्तन का उदाहरण है, परंतु कभी कभी व्यक्ति कई बुरी आदतों जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि को भी सीख लेता है। व्यवहार में ऐसे परिवर्तन खराब एवं कुसमोजित परिवर्तन के उदाहरण हैं। सीखने से तात्पर्य व्यवहार में इन दोनों तरह के परिवर्तनों से होता है। दूसरा, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। यहाँ अभ्यास से तात्पर्य किसी प्रकार के प्रशिक्षण से होता है जिसमें व्यक्ति किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए तथा अपनी गलतियों को सुधारते हुए सीखता है। अनुभूति से यहाँ तात्पर्य व्यक्ति की असमकित अनुभूतियों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टाइप करना सीख रहा है। संभवतः टाइप करने की प्रक्रिया को वह एक प्रशिक्षण के आधार पर सीख रहा है, क्योंकि वह बार बार टाइप करता है तथा प्रत्येक बार में अपनी हुई गलतियों को सुधारते भी जाता है। अंत में वह बिना किसी प्रकार की गलती के ही टाइप करना सीख लेता है। यह व्यवहार में परिवर्तन एक प्रशिक्षण के फलस्वरूप हुआ। प्रत्येक प्रक्रिया को सीखने के लिए व्यक्ति को अभ्यास की ही जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा भी होता है कि वह मात्र एक बार के अनुभव से ही सीख लेता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का हाथ एक गर्म स्टोव पर अचानक पड़ जाता है तो वह मात्र एक बार के अनुभव से ही सीख लेता है कि उसे गर्म स्टोव पर हाथ नहीं रखना चाहिए। तीसरा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ऊपर दी गई परिभाषाओं में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन व्यवहार वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो एक खास समय तक एक तरह के स्थायी होता है। उस खास समय की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। वह कुछ दिन का भी हो सकता है तथा कुछ महीनों का भी हो सकता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति टाइप करना सीखता है तो उसके व्यवहार में हुआ इस तरह का परिवर्तन कुछ समयों तक स्थायी होता है। अभ्यास न करने से संभव है कि 3 या 5 महीने में व्यक्ति फिर से टाइप करना भूल जाए। तब यह कहा जाएगा कि व्यक्ति के व्यवहार में हुआ परिवर्तन 3 या 5 महीनों के लिए अवस्था जैसे परिवर्तन क्षणिक होता है, अर्थात कुछ मिनट के लिए भी होता है। जैसा कि प्रेरणात्मक अवस्था भूख, प्यास, काम, नींद आदि में होता है तो उसे हम सीखना नहीं कहते। हाउस्टन ने इसलिए कहा है कि व्यवहार में प्रेरणात्मक स्थिति में उतार चढ़ाव होने से उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन सीखने की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऊपर दिए गए विश्लेषण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहलाने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना अनिवार्य है। पहला, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप होता है। थकान, दवाखाने, अभिप्रेरणात्मक स्थिति में उतार चढ़ाव आदि के कारण हुए परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जाता। दूसरा, व्यवहार में अभ्यास या अनुभूति से उत्पन्न परिवर्तन को क्षणिक न होकर अपेक्षाकृत स्थायी होता है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण का महत्व, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। चाहे पशु सीखना हो या मानव सीखना, उसमें अभिप्रेरण का विशेष महत्व होता है। अभिप्रेरण से सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है, क्योंकि अभिप्रेरण की अवस्था मानव या पशु को सही अनुक्रिया करने के लिए एक तरह का आंतरिक बल प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिकों ने पशु सीखना में मूलतः जैविक अभिप्रेरकों जैसे भूख, प्यास, काम, नींद आदि के प्रभाव को अधिक महत्वपूर्ण बतलाया है, क्योंकि ऐसे ही अभिप्रेरक के कारण वे किसी अनुक्रिया को सीखते हैं। जहाँ तक मानव सीखना में अभिप्रेरक के स्थान का महत्व है, इसमें इस बात पर सही है कि पशु के समान मनुष्य भी जैविक अभिप्रेरकों के कारण सीखते हैं, परंतु ऐसा बहुत कम होते देखा गया है। मानव सीखना में जैविक अभिप्रेरक महत्व कम, परंतु अर्जित अभिप्रेरक का महत्व अधिक होता है। पैसा कमाना, समाज में इज्जत पाने की इच्छा, प्रशंसा किए जाने की इच्छा, देश, ऊंचा नीचा पद आदि महत्वपूर्ण अर्जित अभिप्रेरक के उदाहरण हैं। सीखने पर इनमें से सभी का तो नहीं, परंतु कुछ के प्रभाव का अध्ययन मनोवैज्ञानिकों ने किया है और बतलाया है कि मानव सीखने की प्रक्रिया इन अभिप्रेरकों का महत्व काफ़ी है। अब हम पशु तथा मानव सीखना में अभिप्रेरकों के महत्व का वर्णन अलग अलग इस प्रकार कर सकते हैं। पशु सीखना में अभिप्रेरकों का महत्व। सीखने के क्षेत्र में अनेकों ऐसे प्रयोग पशु पर किए गए जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि पशु में जीव अभिप्रेरक होता है तो वह किसी अनुक्रिया को जल्द सीख लेता है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में कुछ प्रयोगों का वर्णन किया जा रहा है। टॉलमैन तथा हॉन्जिक ने एक प्रयोग किए जिसमें चूहों का 3 समूह था तथा तीनों समूह में एक ही तरह की भूल भुलैया में प्रशिक्षित किया गया। चूहों का पहला समूह ऐसा था जो भूखा नहीं था और लक्ष्य बक्स में पहुंचने के बाद उसे भोजन नहीं दिया जाता था। चूहों का दूसरा समूह जो भूखा था परंतु प्रयास समाप्त होने के बाद जब वे लक्ष्य बॉक्स में पहुंचता था तो भोजन नहीं दिया जाता था। प्रोजेक्ट का तीसरा भूखा तथा बॉक्स में पहुंचने के बाद उसे भोजन दिया जाता था। परिणाम में देखा गया कि तीसरा समूह जो भूखा था अर्थात जिसमें भूख अभिप्रेरक मौजूद थे तथा जिसमें भोजन मिलता था द्वारा अन्य दो समूहों की अपेक्षा भूल भुलैया जल्दी सीख लिया गया तथा इस समूह द्वारा सीखने में रोटियां भी बहुत कम की गईं। प्रयोग के परिणाम से स्पष्ट हो जाता है कि अभिप्रेरक के मौजूद होने से चूहों द्वारा भूल भुलैया को जल्दी सीख लिया गया। दूसरा प्रयोगात्मक अध्ययन जिसे मैक्टफिटनेस ने किया है द्वारा यह दिखलाया गया कि जब पशु में दो प्रकार के अभिप्रेरक एक साथ ही वर्तमान होते हैं तो उनके द्वारा सीखने की प्रक्रिया अधिक तेजी से संपन्न होती है। इस अध्ययन में चूहों का तीन समूह लिया गया। पहला समूह बहुत भूखा तथा बहुत प्यासा था, दूसरा समूह बहुत भूखा परंतु बहुत कम प्यासा था तथा तीसरा समूह बहुत प्यासा था परंतु बहुत ही कम भूखा था। इन तीनों समूहों को एक ही तरह की भूल भुलैया सीखने को दिया गया। तीनों समूह को 18 दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम 9 दिनों तक तीनों समूह के चूहों को लक्ष्य बॉक्स में पहुंचने पर ठोस आहार दिया गया तथा अंतिम 9 दिनों में तीनों समूहों के चूहों को लक्ष्य बॉक्स में पहुंचने पर ठोस आहार न देकर सिर्फ पानी दिया गया। प्रयोग के परिणाम बहुत ही रोचक थे। प्रथम 9 दिनों में पहले समूह जिसमें दो अभिप्रेरक एक साथ तीव्र मात्रा में मौजूद थे क्योंकि समूह भूखा तथा प्यासा दोनों ही था, अन्य दो समूहों की अपेक्षा तेजी से भूल भुलैया के प्रारंभ बॉक्स के लक्ष्य बॉक्स तक दौड़ लगाना सीख गया। अंतिम 9 दिनों में जब ठोस भोजन की जगह पर पानी दिया गया तो इस तरह के परिवर्तन से पहले समूह के निष्पादन में अन्य दो समूहों के निष्पादन की अपेक्षा थोड़े समय के लिए कमी आई, परंतु फिर भी 2-3 दिन के बाद इसका निष्पादन अन्य दो समूहों से काफ़ी आगे हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पशु में जब दो अभिप्रेरक एक साथ मौजूद रहते हैं तो उनके द्वारा सीखने की प्रक्रिया में तेजी होती है। मानव सीखना में अभिप्रेरकों का महत्व। मानव सीखना में जैविक अभिप्रेरकों की अपेक्षा अर्जित अभिप्रेरकों के महत्व को मनोवैज्ञानिकों ने अधिक अध्ययन किया है क्योंकि मनुष्य अर्जित अभिप्रेरक के कारण ही अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न चीज़ों का अधिक तेजी से सीखता है। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन को नीचे प्रस्तुत किया जा सकता है। हॉरलॉक ने एक अध्ययन किया जिसमें प्रशंसा तथा फटकार या निंदा का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर देखा गया। इस अध्ययन में छात्रों के तीन समूह थे जिन्हें कुछ अंकों को जो कई कॉलम में लिखे गए थे जोड़ना था। जोड़ने का कार्य 5 दिन तक थोड़े थोड़े समय के लिए किया गया। छात्रों के एक समूह ने जोड़ने के कार्य करते समय काफ़ी प्रशंसा की गई। छात्रों के दूसरे समूह को जोड़ने का कार्य करते समय काफ़ी निंदा की गई तथा फटकार भी दिया गया तथा तीसरे समूह को जोड़ने का कार्य करते समय काफ़ी निंदा की गई तथा फटकार भी दिया गया। परिणाम में देखा गया कि प्रथम दिन से 5वें दिन तक तीसरे समूह जिसे ना तो प्रशंसा मिली थी ना ही फटकार के निष्पादन में कुछ वृद्धि नहीं हुई। जिस समूह के कार्य की प्रशंसा की गई थी उसके सीखने का औसत प्राप्तांक लगातार बढ़ता गया। जिस समूह की कार्य की निंदा की गई थी उसका औसत सीखने का प्राप्तांक प्रारंभ में बढ़ा परंतु बाद में तेजी से गिरावट आ गया। इस प्रयोग के परिणाम से स्पष्ट हो जाता है कि निंदा से सीखने की प्रक्रिया में प्रारंभ में तेजी आती है परंतु बाद में गिरावट आ जाती है। अंतिम परिणाम में यह देखा गया कि प्रशंसित समूह में लड़कियों का निष्पादन लड़कों की अपेक्षा अधिक था जबकि निंदित समूह में लड़कों का निष्पादन लड़कियों की अपेक्षा अधिक था। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि अभिप्रेरण का प्रभाव सीखने पर मनुष्य एवं पशुओं दोनों के ही संदर्भ में सार्थक पड़ता है। क्रिया प्रसूति अनुबंध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्रिया प्रसूत अनुबंध के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस तरह का अनुबंध कई तरह के कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला, पूर्ण बलन अनुसूची। क्रिया प्रसूत अनुबंध में प्रयोगकर्ता प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद पुनः बलन देता है या वह कुछ सही अनुक्रिया के बाद पुनः बलन देता है तथा कुछ के बाद नहीं। पहले के तरह पुनः बलन पैटर्न को सतत पुनः बलन तथा दूसरे तरह के पुनः बलन पैटर्न को आंशिक पुनः बलन की संज्ञा दी गई है। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि सतत पुनः बलन से आंशिक पुनः बलन की तुलना में तेजी से अनुबंध होता है, परंतु जब अनुक्रिया अनुबंधित हो जाती है तो उसके दर को बढ़ाने या संपोषित करके रखने में आंशिक पुनः बलन की भूमिका अहम होती है। आंशिक पुनः बलन के मुख्य दो प्रकार होते हैं, अनुपात अनुसूची तथा अंतराल अनुसूची। अनुपात अनुसूची में पुनः बलन देने का आधार सही अनुक्रिया का संख्या तथा अंतराल अनुसूची में पुनः बलन देने का आधार विशेष समय अंतराल जिसके बीतने पर ही पुनः बलन दिया जाता है। अनुपात अनुसूची तथा अंतराल अनुसूची को निश्चित तथा परिवर्तनीय अनुसूची में बांटा गया है। अनुपात अनुसूची में अंतराल अनुसूची की तुलना में क्रिया प्रसूत अनुबंध तेजी से होता है और स्किनर ने अपने अध्ययन में यह भी पाया है कि परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची में निश्चित अनुपात अनुसूची की अपेक्षा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का अनुबंध तेजी से होता है। इनके प्रयोग में इस परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची को कबूतर 5 गुना अधिक दर से अनुक्रिया करते थे और वे इस दर को कई घंटों तक बनाकर रखते थे। दूसरा, पुनः बलन की मात्रा। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जैसे जैसे पुनः बलन की मात्रा बढ़ती है, प्राणी अनुक्रिया को तेजी से सीखता है, अनुक्रिया को तेजी से करता है तथा उसमें विलोपन के प्रति प्रतिरोध भी अधिक होता है। ग्लेंटन ने अपने अध्ययन के आधार पर इस तथ्य की संपुष्टि की है। इतना ही नहीं, क्रैप्सी ने अपने अध्ययन के आधार पर यह भी बतलाया है कि पुनः बलन की मात्रा तथा प्रत्याशित पुनः बलन की मात्रा में अंतर से निष्पादन का स्तर भी प्रभावित होता है। यह अंतर जितना ही अधिक होता है, निष्पादन का स्तर उतना ही घटिया होता है। तीसरा, पुनः बलन की तत्कालिकता। क्रिया प्रसूत अनुबंध पुनः बलन की तत्कालिकता द्वारा भी प्रभावित होता है। सामान्यतः जब क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के तुरंत बाद पुनः बलन दिया जाता है तो उसका अनुबंध तेजी से होता है। मेडरिनियन के अनुसार आजकल युवा वर्ग कोकेन के प्रति इतना अधिक व्यसनी इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इसका सुखाभासी प्रभाव को व्यक्ति तुरंत महसूस करता है। कलापल्लडी तथा पेरिन द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया के बाद पुनः बलन में यदि अधिक देरी किया जाता है तो उस अनुक्रिया को अनुबंधित होने में काफ़ी समय लगता है। चौथा, अभिप्रेरण का स्तर। स्किनर ने अपने अध्ययन में पाया कि जब चूहों या कबूतरों को कई घंटों से भोजन से वंचित करके उनके अभिप्रेरण स्तर को ऊंचा कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में प्राणी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया को तेजी से सीखते थे। दूसरे तरफ जब अभिप्रेरण का स्तर नीचा होता था तो प्राणी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया को धीमी गति से सीखते थे। स्पष्ट हुआ कि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का अनुबंध कई कारकों को प्रभावित करता है। क्लासकी अनुबंध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग क्लासिकल कंडीशनिंग। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि क्लासकी अनुबंध कई कारकों से प्रभावित होता है। इन कारकों में निम्नलिखित 4 कारक को सबसे महत्वपूर्ण बतलाया गया है। पहला, अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के युग्मित उपस्थिति की संख्या। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जब सीखने के दौरान अनुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक को युग्मित करके कई बार उपस्थित किया जाता है तो इसमें अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। इन दोनों उद्दीपकों के युग्मित प्रस्तुतिकरण की संख्या जितनी ही अधिक होती है अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। इन अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति या पशु जिन्हें अनुबंध का प्रयोज्य बनाया गया है के व्यक्तित्व गुणों या विशेषताओं पर निर्भर करता है कि अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक युग्मित प्रस्तुतिकरण की संख्या कितनी हो। इसके बारे में कोई एक समान नियम नहीं है। दूसरा, स्वाभाविक उद्दीपक की तीव्रता गैरोमनोज्ञों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि अगर अनुबंधित उद्दीपक को बहुत तीव्र स्वाभाविक उद्दीपक के साथ युग्मित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में अनुबंधित अनुक्रिया अधिक मजबूत होती है। इतना ही नहीं, ऐसी परिस्थिति में अनुबंधित अनुक्रिया को व्यक्ति जल्द सीख लेता है। तीसरा, अनुबंधित उद्दीपक द्वारा किस हद तक स्वाभाविक उद्दीपक के बारे में सही सही पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस कारक को रॉबर्ट रेस्कोरला द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण बतलाया गया है। रेस्कोरला का कहना था कि एक तटस्थ उद्दीपक को एक अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ मात युग्मित कर देने से ही क्लासिकी अनुबंध अपने आप में स्थापित नहीं हो जाता बल्कि अनुबंध का स्थापित होना इस बात पर आधारित होता है कि तटस्थ उद्दीपक द्वारा कितना सही सही स्वाभाविक उद्दीपक के आने पर सूचना प्राणी को मिलती है। यही कारण है कि आज एक ऐसी आवाज जिसके बाद प्राणी को हमेशा भोजन दिया जाता है से अधिक मात्रा पर लाश ताव होगा परंतु वह आवाज जिसके बाद प्राणी को यदा कदा भोजन दिया जाता है से प्राणी में लाश ताव कम मात्रा में उत्पन्न होता है। चौथा, अनुबंधित उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक का सामाजिक संबंध। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि अगर अनुबंधित उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के तुरंत पहले दिया जाता है तो इससे अनुबंध तेजी से होता है। स्प्रेज तथा उनके सहयोगियों तथा स्पुनर तथा केल्लो द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जब ये दोनों उद्दीपक साथ साथ दिए जाते हैं तो अनुबंध बहुत धीरे होता है ये ना के बराबर होता है। जब अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के बाद दिया जाता है तो अनुबंध शायद ही स्थापित हो पाता है। अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के बीच का आदर्श समय आधा सेकंड या 500 मिली सेकंड बतलाया गया है क्योंकि इस समय अंतराल पर अनुबंध बहुत जल्द स्थापित होते पाया गया है। सोलोमन तथा उनके सहयोगियों के अनुसार प्रयोज्य की आयु से भी यह आदर्श समय अंतराल प्रभावित होता है। इस क्षेत्र में किए गए मनोवैज्ञानिक अध्ययनों को समान निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के बहुत पहले उपस्थित किया जाता है तो इन दोनों के बीच कोई सहचर स्थान नहीं हो पाता। इस सामान्य नियम का मात्र अपवाद स्वाद विरुचि आदि का अनुबंध में पाया गया है। स्पष्ट हुआ कि क्लासिकी अनुबंध कई तरह के कारकों द्वारा प्रभावित होता है। साधनात्मक अनुबंध के स्वरूप एवं प्रकार, नेचर एंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। साधनात्मक अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी मुक्त अनुक्रिया परिस्थिति में रहकर किसी व्यवहार को सीखता है। साधनात्मक अनुबंध में प्राणी को प्रयोगात्मक परिस्थिति जैसे स्किनर बॉक्स या पहेली बॉक्स में इधर उधर घूमने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस तरह के अनुबंध में एक खास विशेषता यह होती है कि प्राणी इनमें अनुक्रिया स्वयं करता है ना कोई विशेष उद्दीपक द्वारा उत्तेजित होने पर करता है। जैसे स्किनर बॉक्स में चूहा लीवर दबाने की अनुक्रिया स्वयं करता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अनुक्रिया किसी उद्दीपक के प्रति किया जा रहा है। सच पूछा जाए तो प्राणी यहाँ पूरे वातावरण पर ही परिचालन करते हुए अनुक्रिया करता है। यही कारण है कि इसे क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। इस तरह के अनुबंध का उदाहरण हमें थॉर्नडाइक एवं स्किनर द्वारा सीखने के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों से मिलता है। मनोवैज्ञानिकों ने साधनात्मक अनुबंध या क्रिया प्रसूत अनुबंध को निम्नलिखित 8 भागों में बांटा है। पहला, पुरस्कार प्रशिक्षण। पुरस्कार प्रशिक्षण साधनात्मक अनुबंध का सबसे सरल प्रकार है। इस तरह के प्रशिक्षण की मुख्य विशेषता यह है कि जब प्राणी प्रयोगात्मक परिस्थिति में एक खास अनुक्रिया को करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, स्किनर बॉक्स में चूहा जब लीवर दबाने की अनुक्रिया करता था तो उसे भोजन दिया जाता था, अतः यह पुरस्कार प्रशिक्षण का उदाहरण है। इस तरह से पुरस्कार प्रशिक्षण की सबसे प्रमुख आवश्यकता यह होती है कि मानव या पशु पहले कोई उपयुक्त अनुक्रिया करता है और तब उसे वांछनीय परिणाम अर्थात पुरस्कार मिलते हैं। दूसरा, विभेदन प्रशिक्षण। विभेदन प्रशिक्षण में प्राणी को एक खास अनुक्रिया परिस्थितियों में विभेद करते हुए सीखना दिखाया जाता है। इस तरह के साधनात्मक सीखना में प्राणी को जैसे चूहा को स्किनर बॉक्स में रखा दिया जाता है और उसके छत से एक बल्ब लटका दिया जाता है। इसे विभेदन संकेत कहा जाता है। किसी प्रयास में बल्ब जला दिया जाता है तथा किसी प्रयास में इसे बुझा दिया जाता है। रोशनी ऑन अवस्था में यदि वह लीवर दबाने की अनुक्रिया करता है तो इसे भोजन दिया जाता है। इसके कुछ समय के बाद दूसरी परिस्थिति में प्रारंभ होती है जिसमें रोशनी ऑफ होती है और यदि चूहा इस परिस्थिति में लीवर दबाने की अनुक्रिया करता भी है तो उसे भोजन नहीं मिलता। इस तरह रोशनी ऑन तथा रोशनी ऑफ होने की परिस्थिति में लगातार कई प्रयास दिए जाते हैं। धीरे धीरे चूहा लीवर दबाने की अनुक्रिया को दो तरह की परिस्थितियों में विभेद करते हुए सीख लेता है। इसे ही विभेदन प्रशिक्षण कहा जाता है। तीसरा, मुक्ति प्रशिक्षण। मुक्ति प्रशिक्षण को उन्मुक्ति प्रशिक्षण भी कहा जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण में एक विशेष बॉक्स तैयार किया जाता है जिसे सटिल बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स में दो कक्ष होते हैं। इन दोनों कक्षों के बीच एक दरवाजा होता है जिसे ऊपर से नीचे किया जा सकता है। नीचे की ओर गिरा देने से एक कक्ष दूसरे कक्ष से अलग हो जाता है, परंतु फिर भी उस दरवाजे की बनावट कुछ ऐसी होती थी कि यदि प्राणी चाहे तो उसे लांग कर या छलांग लगाकर दूसरे कक्ष में जा सकता था। इस प्रशिक्षण में प्राय कुत्ता को प्रयोज्य बनाया जाता है। कुत्ता को किसी एक कक्ष में रख दिया जाता है। चूँकि कक्ष की स्तर स्टील के छड़ का बना हुआ है, अतः उसके द्वारा कुत्ता को हल्का बिजली का शॉक दिया जाता है। शॉक लगते ही कुत्ता बेचैन होकर वहां से भागना चाहता है और फिर उधर उधर इधर उधर देखकर बीच में के दरवाजे को लांघते हुए दूसरे कक्ष में आ जाता है जिसका भी स्तर स्टील की छड़ का ही होता है, परंतु अभी उसे बिजली की धारा प्रभावित नहीं होती। कुछ मिनट कुत्ता जब आराम कर लेता है तो फिर उस कक्ष पे स्तंभ में बिजली की धारा प्रभावित की जाती है और फिर कुत्ता में उसी तरह की बेचैनी देखी जाती है और पुनः बीच के दरवाजे को लंघते हुए वह पहले वाले कक्ष में आ जाता है जिसकी स्तंभ में अभी विद्युत की धारा नहीं होती। इस तरह से कुत्ता को दोनों कक्षों में प्रशिक्षण दिया जाता है और अंत में देखा जाता है कि बिजली का शॉक लगने के बाद तथा कुत्ता को उछलकर या लांग कर दूसरे कक्ष में आने के बीच का समय बहुत कम हो जाता है और तब यह समझा जाता है कि कुत्ता मुक्ति अनुक्रिया को पूर्णतः सीख लिया है। चौथा, परिवर्जन प्रशिक्षण। परिवर्जन प्रशिक्षण में पशु को दंड से बचना सिखलाया जाता है। अगर पशु एक खास समय के भीतर अनुक्रिया कर लेता है तो संभवतः उसे दंड नहीं मिलता, परंतु यदि वह अनुक्रिया उस खास समय के भीतर नहीं करता तो उसे दंड मिलता है। परिवर्जन प्रशिक्षण के लिए जो उपकरण या सटिल बॉक्स का उपयोग किया जाता है उसे चित्र 4.7 में दिखलाया गया है। चित्र 4.7 में स्पष्ट है कि इस बॉक्स में दो कक्ष होते हैं। एक उजला कक्ष तथा दूसरा काला कक्ष। उजला कक्ष का फर्श धातु का बना होता है ताकि उसमें होकर बिजली की धारा प्रभावित ना हो सके, तथा काला कक्ष का फर्श अधातु का बना होता है, फलतः इससे होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। प्राणी को उजला कक्ष में रख दिया जाता है एवं ये रोशनी के संकेत के रूप में जला दिया जाता है, तथा इसके 10-15 सेकंड के समय बीतने के बाद बिजली का हल्का शॉक दिया जाता है, फलतः प्राणी में बेचैनी बढ़ती है और वह उजला कक्ष तथा काला कक्ष के बीच बनाए गए दीवार पर चढ़कर काला कक्ष में आ जाता है, जिसमें बिजली का शॉक नहीं लगाया जाता। यहाँ आकर वह आराम करता है। फिर दूसरे प्रयास में प्रयोगकर्ता प्राणी को पुनः पकड़कर उजला कक्ष में रख देता है, जहाँ रोशनी के संकेत के रूप में जला दिया जाता है। 10-15 सेकंड के बाद पुनः बिजली का उसे शॉक मिलता है, जिससे बेचैन के लिए पुनः दोहराया जाता है। अंत में वह एक ऐसा भी प्रयास आता है जिसमें प्राणी रोशनी का संकेत मिलने के 10-15 सेकंड के भीतर ही उजला कक्ष से काला कक्ष में चला जाता है। फलस्वरूप उसे बिजली का शॉक नहीं लगता, क्योंकि शॉक 10 से 15 सेकंड बीतने के बाद ही दिया जाता था। इस तरह से प्राणी दंड से बचना सीख लेता है। सोलोमन तथा विनी ने एक प्रयोग कुत्ता पर किया, जिससे उन्होंने पाया कि कुत्ता धीरे धीरे परिवर्जन अनुक्रिया करना सीख लिया। परिवर्जन सीखना अनुबंध के क्षेत्र में आजकल एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसे कहा जाता है का भी अध्ययन पर बल डाला जाता है। इस अध्ययन में मायर सेलिगेमन तथा सोलोमन ने विशेष अभिरुचि दिखलाया है। इन लोगों का मत है कि यदि पशु जैसे कुत्ता को सामान्य परिवर्जन प्रशिक्षण देने के पहले एक ऐसी परिस्थिति में रखकर बिजली का आघात दिया जाता है जिससे हर संभव प्रयास के बावजूद वह भाग नहीं सकता, तो ऐसे पशु परिवर्जन अनुक्रिया करना नहीं सीख पाएंगे। जैसे यदि कुत्ते को पवेलियन साज में रखकर बिजली का आघात कुछ देर तक दिया जाता है, जिससे प्रयास करने के बावजूद भी उसे छुटकारा नहीं मिल सकता, और उसके बाद उसे परिवर्जन अनुक्रिया सीख लेने के लिए बने बॉक्स में रखा जाता है, जहां वह चाहे तो बॉक्स के दूसरे चैम्बर में आकर आघात से बच सकता है, तो कुत्ता चुपचाप बिजली का आघात सहते रहता है। इससे आघात से बचने की आशा की किरण नहीं दिखलाई देती। इसे अर्जित निसहजता की संज्ञा दी गई है, जिसे अन्य मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य तथा कुछ विशेष तरह के पशुओं जैसे बंदर एवं बिल्लियों में भी स्पष्ट हो पाया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे माउर तथा लोमोरॉक्स ने कहा है कि परिवर्जन अनुबंध में पवेलियन अनुबंध तथा साधनात्मक अनुबंध के दोनों ही एक तरह से सम्मिलित होता है। इसे परिवर्जन अनुबंध का ही द्विकारक सिद्धांत कहा गया है। जब चूहा को उजला बॉक्स में रखा जाता है और उसे बिजली का शॉक दिया जाता है, तो उसमें एक अनुबंधित दर विकसित हो जाता है, जो पावलोवियन अनुबंध का उदाहरण है। यहाँ रोशनी का संकेत CS है, बिजली का शॉक UCS है। बिजली के शॉक से उत्पन्न डर तथा रोशनी के संकेत मात्र देखने से ही जो डर उत्पन्न होता है, यानी 10-15 सेकंड के पहले, वह CR का उदाहरण है। इस सिद्धांत का दूसरा कारक यह बतलाया है कि परिवर्जन अनुबंध में साधनात्मक सीखना भी सम्मिलित है। जब प्राणी उजला कक्ष में होता है तो उसमें अनुबंधित डर होता है। वह बीच के दीवार पर चढ़कर काला कक्ष में आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें जो डर था वह समाप्त हो जाता है। इस तरह के काला कक्ष में आने की अनुक्रिया करने से प्राणी एक तरह का पुरस्कार मिलता है। स्पष्ट हुआ कि परिवर्जन अनुबंध में पावलोवियन अनुबंध द्वारा सीखना तथा साधनात्मक अनुबंध द्वारा सीखना दोनों ही सम्मिलित होते हैं, जिसे परिवर्जन अनुबंध का द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है। पांचवा, दंड प्रशिक्षण। दंड प्रशिक्षण में प्राणी निष्क्रिय होकर पूर्व सीखी गई अनुक्रिया को पुनः नहीं कर सकता, क्योंकि प्रयोगात्मक स्थिति में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाता है कि सीखी गई अनुक्रिया को ना करने में ही उसे पुरस्कार मिलता है या दंड से छुटकारा मिलता है। प्राय दंड प्रशिक्षण के लिए स्किनर बॉक्स में पहले चूहा को पुरस्कार के आधार पर लीवर दबाने की अनुक्रिया को सिखला दिया जाता है, फिर अचानक किसी प्रयास में लीवर का संबंध भोजन से तोड़कर बिजली से कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप लीवर दबाने से चूहा को भोजन मिलने के बजाय बिजली का शौक लगता है। ऐसी परिस्थिति में चूहा को निष्क्रिय होकर लीवर को न दबाने की अनुक्रिया को सीखना होता है, क्योंकि ऐसा ही करने में उसे पुरस्कार मिल सकता है, अर्थात वह दंड से बच सकता है। चूँकि इस तरह के प्रशिक्षण से प्राणी निष्क्रिय होकर सीखी हुई अनुक्रिया को पुनः न करने की अनुक्रिया को सीखता है, इसलिए इस तरह के प्रशिक्षण को कभी कभी निष्क्रिय परिवर्जन प्रशिक्षण भी कहा जाता है। छठा, विलोपन प्रशिक्षण। विलोपन प्रशिक्षण बहुत हद तक दंड प्रशिक्षण से मिलता जुलता है। अंतर इतना ही है कि विलोपन प्रशिक्षण में पुनर्बनन धनात्मक होता है, अर्थात कोई पुरस्कार होता है जिसके आधार पर पूर्व सीखी गई अनुक्रिया को प्राणी धीरे धीरे भूलता है। विलोपन प्रशिक्षण के लिए स्किनर बॉक्स में पहले पुरस्कार या भोजन देकर चूहा को लीवर दबाने की अनुक्रिया करना सिखला दिया जाता है। इसके बाद प्रयोगात्मक विधि से अचानक कुछ परिवर्तन किया जाता है। अब चूहा को लीवर दबाने के बाद भोजन नहीं दिया जाता, बल्कि जब वह लीवर को नहीं दबाता और उसके अगल बगल में घूमता है, तभी उसे भोजन दे दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया में कई बार दोहराने के बाद चूहा धीरे धीरे लीवर न दबाने की अनुक्रिया को सीख लेता है तथा लीवर दबाने की अनुक्रिया को करना छोड़ देता है। सातवां, विभेदित दंड प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में प्रयोगात्मक विधि ठीक वही होता है जो दंड प्रशिक्षण का होता है, परंतु इसमें सिर्फ विभेदन संकेत होता है जिसे स्किनर बॉक्स में लगा दिया जाता है और तब प्रशिक्षण दी जाती है। जैसे स्किनर बॉक्स में प्रकाश बल्ब लगा दिया जाता है जो विभेदन संकेत का कार्य करता है, बल्ब के जलते रहने की अवस्था में दंड प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात लीवर दबाने से उसे बिजली का शौक दिया जाता है। परंतु जब बल्ब बुझा दिया जाता है तो चूहा को लीवर दबाने में भोजन दिया जाता है। इस तरह से जब लगातार बल्ब के जलते रहने की अवस्था तथा बल्ब के बुझा रहने की अवस्था के वैकल्पिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है, तो चूहा इन दोनों अवस्थाओं में विभेद करना सीख लेता है और बल्ब के बुझा रहने की अवस्था में वह लीवर दबाने की अनुक्रिया करना सीख लेता है तथा बल्ब के जलते रहने की अवस्था में वह लीवर न दबाने की अनुक्रिया करना सीख लेता है। आठवां, विभेदित विलोपन प्रशिक्षण। विभेदित विलोपन प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि बहुत कुछ विलोपन प्रशिक्षण के प्रशिक्षण से ही समान है, सिर्फ अंतर इतना ही है कि प्रयोगात्मक परिस्थिति में एक विभेदन संकेत जैसे रोशनी के लिए बल्ब लगा दिया जाता है, बल्ब के जलते रहने की अवस्था में चूहा को स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया ना करने पर उसे भोजन दे दिया जाता है, फिर जब बल्ब बुझा रहने की अवस्था में चूहा को स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया करने के बाद भी भोजन दिया जाता है। इस तरह से बल्ब जलते रहने की अवस्था तथा बल्ब बुझा रहने की अवस्था को लगातार वैकल्पिक रूप से देने से चूहा इन दोनों अवस्थाओं में विभेद करना सीख लेता है और बल्ब जलते रहने की अवस्था में चूहा लीवर दबाने की अनुक्रिया को तेजी से कर पाता है।